आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार किया तेज। दूसरे चरण के नामांकन वापसी की आखिरी तारीख कल। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों को प्रचार के लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी पर किया समय आवंटित। निर्वाचन आयोग को चुनाव घोषणा के केवल 20 दिन में सुविधा पोर्टल पर रैलियों, अस्थायी पार्टी कार्यालय खोलने और अन्य कार्यों के लिए 73,000 से अधिक आवेदन मिले और लखनऊ के एकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच आज हो रहा है क्रिकेट मुकाबला। नमस्कार। प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शोभित। लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों के प्रचार के लिए अभियान तेज कर दिया है। वहीं राज्य में दूसरे चरण के तहत 8 सीटों के लिए नाम वापसी की कल अंतिम तिथि है। इस चरण में अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा सीट के लिए 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण के लिए कुल 175 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था, जिसमें से 94 प्रत्याशियों के नामांकन वैध पाए गए और 81 प्रत्याशियों के नामांकन निरस्त कर दिए गए। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा और राज्य विधानसभा के उप निर्वाचन में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राज्यस्तरीय राजनीतिक पार्टियों को दूरदर्शन और आकाशवाणी केन्द्रों पर प्रसारण समय आवंटित किया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिड़वा ने लखनऊ में बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में 6 राष्ट्रीय पार्टियों और उत्तर प्रदेश के 2 राज्यस्तरीय दलों को प्रचार प्रसार के लिए समय आवंटित किया गया है। यह सुविधा पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त सियासी पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों को नहीं मिलेगी। श्री रिड़वा ने बताया कि राष्ट्रीय दलों को दूरदर्शन और आकाशवाणी के क्षेत्रीय केन्द्रों पर प्रचार प्रसार के करीब 15 घंटे का समय आवंटित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी को 362 मिनट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 222 मिनट, सीपीआई मार्क्सवादी को 81 मिनट, आम आदमी पार्टी को 71 मिनट तथा बहुजन समाज पार्टी को 96 मिनट का समय दिया गया है। वहीं राज्यस्तरीय राजनीतिक दलों समाजवादी पार्टी को 53 और अपना दल एस को 27 मिनट आवंटित किया गया है। साथ ही इन दोनों राज्यस्तरीय दलों को पूरे देश में दर्शकों के लिए उपलब्ध दूरदर्शन के क्षेत्रीय सैटेलाइट सेवा चैनल और आकाशवाणी के राष्ट्रीय हुकअप पर 10-10 मिनट का समय दिया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह भी बताया कि दूरदर्शन और आकाशवाणी पर किसी भी राजनीतिक दल के ऐसे बयान को प्रसारण की इजाजत नहीं होगी जिसमें धर्मों और समुदायों पर हमला किया गया हो। इसके अलावा ऐसे वक्तव्य जिनसे राष्ट्रीय एकता, संप्रभुता और अखंडता प्रभावित हो प्रसारित नहीं किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा के 20 दिन में ही सुविधा पोर्टल पर 73,000 से अधिक आवेदन मिले हैं। इसके माध्यम से रैलियां आयोजित करने, अस्थायी पार्टी कार्यालय खोलने, घर घर जाकर प्रचार करने और प्रचार सामग्री वितरित करने की अनुमति ली जा सकती है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि प्राप्त अनुरोधों में से 44,600 से अधिक मंजूर किए गए हैं। सुविधा पोर्टल चुनाव प्रबंधन में पारदर्शिता को भी बढ़ावा देता है। पोर्टल निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी है जो स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप समान सुविधा उपलब्ध कराता है। राजनीतिक दल और उम्मीदवार चुनाव प्रचार संबंधी अनुमति के लिए इस पोर्टल पर ऑनलाइन अनुरोध कर सकते हैं। सभी हितधारकों को समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए ऑफलाइन आवेदन भी किए जा सकते हैं। उधर आयोग ने उत्तर प्रदेश सहित 6 राज्यों में चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी धर्मेश एस गंगवार को सामान्य और भूतपूर्व आईपीएस अधिकारी एनके मिश्रा को विशेष पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। बुलंदशहर की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी विधायक प्रदीप चौधरी पर चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी है। विशेष अभियोजन राकेश कुमार वर्मा ने बताया कि बुलंदशहर सदर विधायक प्रदीप चौधरी के खिलाफ 8 फरवरी 2022 को बिना इजाजत जनसभा और रैली आयोजित करने का मुकदमा दर्ज किया गया था। धारा 144 चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन और कोविड महामारी अधिनियम की धाराओं के तहत दर्ज मुकदमे की सुनवाई एमपीएमएलए विशेष अदालत में चल रही है। विशेष जज विनय कुमार सिंह ने यह रोक श्री चौधरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए जाने के बावजूद अदालत में हाजिर न होने के कारण लगाई है। न्यायालय ने जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक को भी इस बारे में जरूरी निर्देश दिए हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी राज्य की सभी 80 लोकसभा सीटें जीतेगी। श्री सिंह ने आज गौतमबुद्ध नगर के दादरी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी बूथ सम्मेलन में कहा कि कार्यकर्ताओं को पार्टी की नीतियां और उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाना चाहिए ताकि पार्टी को और अधिक मतों से जिताया जा सके। उन्होंने कहा कि पिछले दो दशकों के दौरान देश जीवन के सभी क्षेत्रों में विकास की ओर तेजी से बढ़ा है। केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं और नीतियों से शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है और राज्य सरकार हर जिले में विश्वविद्यालय बना रही है। देश में जगह जगह एयरपोर्ट, आयुर्विज्ञान संस्थान और अस्पताल बनाए जा रहे हैं। ये डबल इंजन की सरकार की पारदर्शी नीतियों का नतीजा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के कार्यकाल में संवैधानिक संस्थाओं पर लोगों का भरोसा कम हुआ है। श्री यादव ने आज गाजीपुर में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की मौत पर शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए उनके परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्तार अंसारी की हिरासत में हुई संदिग्ध मौत की न्यायिक जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में कराने की मांग भी की। सपा प्रमुख ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा पुलिस हिरासत में मौतें उत्तर प्रदेश में हो रही हैं और मौजूदा सरकार इन घटनाओं के प्रति पूरी तरह उदासीन है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र और राज्य विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने आज अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन किए। राम मंदिर आंदोलन में शामिल रहे श्री मिश्र ने अपने अतीत को याद करते हुए कहा कि भव्य राम मंदिर बनने के बाद वह यहां दर्शन के लिए आए हैं, यह उनके लिए बहुत ही सुखद अनुभव है। उन्होंने इस बात पर खुशी जताई कि अयोध्या का स्वरूप बदल गया है और विकास की गंगा बह रही है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष श्री महाना ने कहा कि रामलला के दर्शन कर वह धन्य महसूस कर रहे हैं। रामनवमी संबंधी व्यवस्थाओं के बारे में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में श्री महाना ने कहा कि अयोध्या में अब तक कार्यक्रमों के लिए शासन प्रशासन ने बेहतरीन व्यवस्थाएं की हैं। आगामी चैत्र रामनवमी के अवसर पर उच्च कोटि की व्यवस्थाएं देखने को मिलेंगी। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला होगा। आईपीएल का यह मैच आज शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इस मुकाबले को लेकर लखनऊ के क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मैच के लिए लखनऊ और आसपास के जिलों के अलावा अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में खेल प्रेमी आ रहे हैं। प्रशासन द्वारा यातायात व्यवस्था के साथ ही सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आज लखनऊ मेट्रो का संचालन रात 12:30 बजे तक किया जाएगा। इसी के साथ ही स्टेडियम की ओर जाने वाली सड़कों पर यातायात डायवर्जन भी किया गया है। स्वास्थ्य के बारे में वैश्विक स्तर पर जागरूकता लाने के लिए आज विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। इसका उद्देश्य जरूरी स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव झेल रहे दुनिया के लगभग 4.5 अरब लोगों को समुचित स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराना है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली की प्रोफेसर डॉक्टर रीमा दादा ने कहा कि जीवन शैली में बदलाव लाकर और योग जैसे अभ्यास अपनाकर अनेक रोगों को दूर किया जा सकता है। जीवन शैली से जुड़े रोग विशेषकर युवाओं में तेजी से फैल रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार किया तेज। दूसरे चरण के नामांकन वापसी की आखिरी तारीख कल। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों को प्रचार के लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी पर किया समय आवंटित। निर्वाचन आयोग को चुनाव घोषणा के केवल 20 दिन में सुविधा पोर्टल पर रैलियों, अस्थायी पार्टी कार्यालय खोलने और अन्य कार्यों के लिए 73,000 से अधिक आवेदन मिले। और लखनऊ के एकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच आज हो रहा है क्रिकेट मुकाबला। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।